हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थक गए क्या? हरे अभी हम लोग मानसी गंगा के किनारे में खड़े हैं। उम्मीद है कि आपने सब लोगों ने आते वक्त दाहिने हाथ में मानसी गंगा का दर्शन किया होगा। किया कि नहीं किया? अभी क्या कर रहे हैं? वो जो मंदिर है ना, मंदिर सफेद रंग का जो कलश ऊपर आ रहा है, तो क्या कहते हैं उसको, शिखर, वो मानसी गंगा के किनारे में। मानसी गंगा श्री गिरिराज गोवर्धन के बिल्कुल बीच में है। दोबारा आपको विनती करते हैं, आप लोग सब लोग अंदर आ जाओ, जितना हो सके उतना अंदर आ जाओ, तो गाड़ियों को असुविधा न हो, सब लोग पास पास में आ जाओ। तो जब भी एक बार नंद महाराज ग्वाल बालों के साथ में गंगा जी की महिमा सुन रहे थे, तो उन्होंने सुना कि गरुड़ जी एक बार सांप को उठाकर लेके जा रहे थे, तो सांप की पूंछ को गंगा जी का स्पर्श हुआ, तो हाथ में जो सांप था गरुड़ जी के, वो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हो गया, मतलब उसकी सारूप्य मुक्ति हो गई। ये सुनकर नंद महाराज झट से खड़े हो गए, मुझे अभी जाना है गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो हमारे कान्हा को अच्छा नहीं लगा कि हर बार उठते हैं और बाहर जाने का प्लानिंग करते हैं। कहा कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग मेरे साथ आओ, और सबको ग्वाल बालों को नंद बाबा के साथ कृष्ण भगवान गिरिराज के मध्य में लेकर आए। और सबने देखा, सब ग्वाल वालों ने, कि भगवान के हृदय से गंगा देवी प्रकट हो गई। हाँ, मगरमच्छ पर बैठी हुई, सुंदर दर्शन दिया, और हाथ जोड़कर उन्होंने सबके सामने छोटे से कान्हा को बोला, आज्ञा करो भगवान, हमारे लिए क्या सेवा है। सब लोग दंग हो गए, अरे इतनी बड़ी गंगा मैया हमारे कान्हा को दंडवत कर रही है, क्या आदेश है। भगवान ने कहा, आपका जल यहाँ डाल दो और एक विशाल कुंड बना दो। तो सबके सामने गंगा जी ने यहाँ पर अपना जल जो है वो प्रकट किया, और समुद्र समान एक विशाल महाकाय जलाशय उत्पन्न कर दिया। सबने अपने आंखों से देखा, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं थी। नंद बाबा ने टिकट कैंसिल कर दिया और यहीं पर स्नान किया। भगवान ने यही दिखाया कि ब्रज के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सारे धाम जो है वो ब्रज में बसे हुए हैं, यहाँ पर भगवान ने गंगा जी को बसाया है। और इसके पश्चात सब लोगों ने स्नान किया है, ब्रजवासियों, नंद बाबा ने, और इसके पश्चात इस विशाल जलाशय जो गोवर्धन के बिल्कुल बीच में है, इसलिए आप जब उस तरफ जाएंगे तो भी आपको दर्शन होगा, जब यहाँ से घूम के आएंगे तो भी दर्शन होगा, लेकिन जब हम दोबारा घूम के जाएंगे तो वहां पर बहुत भीड़ होगी, वहां पर कथा करने का जगह नहीं होगा, इसलिए यहीं पर उसकी कथा बता रहे हैं। तो ये चक्रेश्वर महादेव का भी स्थान है, ये मंदिर नहीं, थोड़ा आगे है। जब भगवान ने गिरिराज को उठाया था तो जल का एक बूंद भी, जल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे चक्र को आदेश दिया था। तो चक्र ऐसे जोरदार मंडराए गोवर्धन के चारों ओर कि जितना जल ऊपर गिरा पर्वत के ऊपर, वो एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी, सब बाष्प होकर आकाश में चली गई। तो चक्र भगवान ने, चक्र ने यहाँ पर बहुत बढ़िया सेवा किया है भगवान के आदेश के अनुसार। तो चक्र ने बाद में जब सेवा समाप्त हुई तो भगवान को विनती की कि हमें भी यही आसरा दो, तो भगवान ने यहाँ पर उनको अपना स्थान दे दिया, उसका नाम है चक्र तीर्थ। तो ये उस तरफ है जब मेरी उंगली दिखा दिखा रही है, और चक्र तीर्थ पे चक्रेश्वर महादेव विराजमान है। बोलो शंकर भगवान की। मथुरा में भूतेश्वर के रूप में, वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में, गोवर्धन में चक्रेश्वर के रूप में, कामवन में कामेश्वर के रूप में, बरसाना में ब्रजेश्वर महादेव के रूप में, नंदगांव में नंदीश्वर के रूप में, ऐसे वो आशेश्वर महादेव अनेक प्रकार से विराजमान है, यहाँ पर चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। यहीं पर उनके मंदिर के सामने सनातन जी गोस्वामी महाराज भजन करने के लिए आए। जब उनका वृंदावन में मंदिर बनने जा रहा था तो कृष्णदास ब्रह्मचारी को मंदिर का पूजा अर्चा सौंप के मंदिर निर्माण के समय वो भ्रमंती करते करते यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने भजन किया है। रोज वो 40 किलोमीटर की लंबी दीर्घ परिक्रमा किया करते थे, हर रोज, एवरी सिंगल डे। 70 साल की अवस्था में भगवान ने उनको दर्शन दिया और अपनी शिला, जो स्वयं उन्होंने मुरली बजाकर इसको पिघलाया था, ऐसी शिला को स्वयं हाथ में धारण करके बालक के रूप में उन्होंने सनातन जी महाराज को दिया। फिर स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि वह बालक मैं ही था। मेरी आपको विनती है कि अभी इसके आगे आप इतनी बुरी अवस्था में इतनी लंबी परिक्रमा मत किया करो। इस शिला के 4 बार आप प्रदक्षिणा करोगे तो आपको पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा। तब से सनातन जी महाराज ने इसी जगह पर रहते हुए उस शिला का 4 बार प्रदक्षिणा करना आरंभ किया। इसी जगह पर वो शास्त्र लिख रहे थे तब बहुत उनको मच्छर काटने लगे। आपको काटते गोवर्धन में मच्छर? सबके रूम में काटते कि नहीं काटते? थोड़े थोड़े काटते ना। उनको इतने काटने लगे कि उनका भजन और लेखन दोनों में बाधा आ गई। तो वो यहां से जाने लगे कि भाई ये जगह अभी सुविधा नहीं रही यहां पर, मैं तो जा रहा हूं। उस समय महादेव, चक्रेश्वर महादेव एक ब्राह्मण बन के आए और विनती किया, महाराज जी कहां जा रहे हैं आप? क्योंकि सनातन गोस्वामी जैसे संत का संग छोड़ने के लिए उनका दिल नहीं कर रहा था। तो ब्राह्मण के रूप में आके उन्होंने विनती किया, महाराज आप यहां से मत जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, मुझे कुछ टाइम दे दो, एक रात तो रहो यहां पर। तो रुक गए ब्राह्मण के, ब्रजवासी के इच्छा से। उस दिन श्री शंकर महादेव उस देवता के पास गए जो मच्छरों के इंचार्ज है। आपको पता होगा शायद कि हर चीज के इंचार्ज देवता होते हैं। आपके शरीर में जितने अवयव है हर एक के लिए एक देवता है। आंखों के लिए अलग है, कानों के लिए अलग है, पेट के लिए अलग है, मेंदों के लिए अलग है, मन के लिए भी अलग अलग देवता है। तो वो मच्छरों के देवता के पास गए, उन्होंने एकदम स्पेसिफिक एप्लीकेशन दिया, मुझे चक्रेश्वर महादेव और मच्छर नहीं चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? लाया समझ में। उस रात से चक्रेश्वर महादेव से मच्छर गायब हो गए और सनातन जी महाराज ने वहां पर निवास वैसे रखा और वैसे रहे वहां पर। सनातन जी गोस्वामी महाराज हर व्यास पूर्णिमा को सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा लगाया करते थे। व्यास पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का दिन, हाँ, और ब्रजवासियों के साथ में उनका बड़ा प्रेम का संबंध था, परिवार के जैसा। उनकी पूछताछ करते थे, लड़की की शादी हुई कि नहीं, खेती में फसल कैसे आई, घर कैसा चल रहा है, बच्चा कैसा है, ऐसी पूरी देखभाल करते थे। और जब वो सनातन गोस्वामी एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो ब्रजवासी रोते थे कि आप क्यों जा रहे हैं हमारा गांव छोड़ के, इतना प्रेम करते थे, ब्रजवासियों से बहुत स्नेह था उनका। तो मेरे ख्याल से 1690 या 70, एग्जैक्टली पता नहीं, 1680 होगा शायद, 1680 साल में मदन मोहन जी का मंदिर पूरा हुआ। उसके बाद में कुछ साल बाद व्यास पूर्णिमा का दिन सब लोग आए तो देखा तो उस दिन ध्यान अवस्था में सनातन जी को स्वर्ण अपना शरीर छोड़ दिया था। मानो दुख की लहर पहुंची सब जगह पर ब्रज में और सभी वृंदावन के ब्रजभूमि सभी संत लोग आए और सनातन गोस्वामी का मृत शरीर अपने कंधे पर लेकर उन्होंने पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। फिर उनका शरीर ले गए वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर बाजू में, वहां पर उनकी प्रत्यक्ष समाधि वहां पर बनाई गई है। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के इष्ट भगवान हैं, संबंध आचार्य हैं, क्योंकि मदन मोहन जी संबंध अभी देवता है। सब लोग यहाँ पर मन में हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी को प्रणाम करो, सुदर्शन चक्र को प्रणाम करो, मानसी गंगा को प्रणाम करो, चक्रेश्वर महादेव को प्रणाम करो। और एक बात बताना भूल गया कि जब भगवान ने यहाँ पर मानसी गंगा प्रकट किया मन से अपने हृदय से, उसके बाद में यहाँ पर अनंत काल तक नौका विहार किया है। कथा सुननी आपको यहाँ पर, समय कम है आपके पास, फिर संक्षेप बता देते हैं। एक बार भगवान यहाँ पर नाविक के रूप में आए, राधा रानी वहां मथुरा से यहाँ पर आई, अंधेरा हो रहा था, बादल भी आ रहे थे, उनको नाव चाहिए थी, तो एक टूटी फूटी नाव में एक नाविक मिला उनको। और नाविक ने कहा कि हमको क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा मक्खन दे देंगे आपको किराए के रूप में। थोड़ी देर बाद में टूटी फूटी नाव लेकर सब गोपियों को लेकर राधा रानी को लेकर नाविक बीच में आया मानसी गंगा के, बोला कि बहुत भूख लग रही है, अपना किराया अभी दे दो, तो हमारे आप में शक्ति खत्म हो गई है। तो उनको मक्खन खिलाया, तो बोला अभी मक्खन खा के पेट भर गया, हमें नींद आ रही है, तो यहां से दो हाथ दो गोपियां दबाओ, दो पांव दो गोपियां दबा सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो उसके बाद में कुछ देर बाद में बोला, अरे सबके मटके खाली करो क्योंकि बोट में पानी आ रहा है, वजन बढ़ रहा है, सब अपने मटके फेंक दो। तो सब गोपियों ने, भोली भाली गोपियों ने सब मटके नदी में फेंक दिए। फिर कुछ देर चलाया, फिर बोला अरे अभी तो और वजन भारी हो रहा है, सब अपने गहने जो है वो नदी में फेंक दो। सब ने अपने गहने उतार के नदी में फेंक दिए, मतलब जलाशय में फेंक दिए। फिर कुछ देर बाद में और बोला कि अभी तुमको सब कपड़े उतार के भी फेंकना पड़ेगा, वजन अभी भी ज्यादा है। तो गोपियां बोलती है अभी हम आपको उठा के फेंक देंगे तो वजन कम हो जाएगा। उन्होंने नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कपड़े चलेंगे। उतने में भगवान की योग माया के प्रभाव से बहुत घने बादल छाके आए और बहुत घनघोर वर्षा होने लगी, आंधी तूफान होने लगा, अंधेरा हो गया, सब गोपियां डर गई। अचानक राधा रानी ने जाके नाभिक को गले लगाया डर के मारे। तब उनको समझ में आया ये हमारे श्याम सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि आज कैसा लीला किया आपने। मैंने कहा हमको मानसी गंगा के बीच में आपको मिलना था, अनोखा विहार करना था। तो उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक रात तक भगवान ने गोपियों को, राधा रानी को नौका विहार का आनंद दिया है। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए हैं, भोजन किया है, मक्खन मिश्री खाया है और राधा रानी के गोद में निवास किया है। रात भर ब्रह्मा जी की एक रात तक उन्होंने, पृथ्वी की एक रात में ब्रह्मा जी की एक रात को समाकर नौका विहार यहाँ पर किया है। ऐसा बहुत सुंदर स्थान है मानसी गंगा। मानसी गंगा धाम की जय। जय श्री राधे। आपकी गति बहुत अच्छी है और आपने बहुत कम समय में बहुत अंतर अच्छा तरह से आपने पार किया है। इसी उत्साह से आगे बढ़ते रहिए। जय जय श्री राधे। अगला स्थान जो है हमारा उद्धव कुंड रहेगा। हरे कृष्ण।